यू सी इन लास्ट चैप्टर न्यारा और ज्ञान कपूर के माता पिता को पता चलता है कि वे एक साथ रह रहे हैं। न्यारा के दादाजी बेदी साहब तुरंत मंदिर में उनकी शादी का आदेश देते हैं। वो स्थिति को नियंत्रित करते हैं और सभी को उनकी इच्छा मानने के लिए मजबूर करते हैं। अब आगे राशिद के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। वो ड्राइंग रूम में आराम से बैठा था, जैसे उसे वही मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। फूफी कहाँ है? नूर ने दूर से पूछा। बस दोनों डॉक्टर को चेकअप कराने गए हैं, राशिद ने बिना झिझक जवाब दिया। आते ही होंगे। अच्छा, नूर ने कहा और सोफे पर बैठ गई। मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। नूर को नहीं पता था कि इस घर की खामोशी कितनी भारी है। उसकी बेचैनी अस्पताल से जुड़ी नहीं थी, ये आने वाले खतरे का संकेत था। कुछ और था जो उसे अंदर ही अंदर असहज कर रहा था, मगर वो उसे नाम नहीं दे पा रही थी। उसे लगा कि वो गुस्से में है, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। मगर उसने बहुत बड़ी गलती की थी यहाँ आकर। तुम बैठो, राशिद उठते हुए बोला, मैं बस अभी आता हूँ। ये कहकर वो बाहर दुकान की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो वापस लौटा। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी, मगर वो केवल कोल्ड ड्रिंक नहीं लाया था, साथ में नींद की गोलियां भी थीं उसके पास। कोल्ड ड्रिंक पियो, बहुत गर्मी है, उसने कोल्ड ड्रिंक नूर के लिए ग्लास में डाल दी। नूर ने ग्लास उठाया और रख दिया, फिर और पूछा, फूफी कब तक आएंगी? उसे फूफी का इंतजार था। बस थोड़ी देर में आ जाएंगी, तुम कोल्ड ड्रिंक पियो ना, राशिद ने कहा। राशिद के चेहरे पर अजीब सी मक्कारी थी। उसने जब पहली बार नूर को देखा था, उसी वक्त उसका मन बेईमान हो गया था। पीच कलर की प्रिंटेड शर्ट और वाइट कलर की सलवार और वाइट दुपट्टे में नूर, जिसे कोई मेकअप नहीं किया था, सिर्फ आंखों में काजल डाला हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। नूर को भी अकेले बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। राशिद को इस समय दरवाज़ा खटखटाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नूर भी बाहर की तरफ देखने लगी। तुम कोल्ड ड्रिंक पियो, मैं देख कर आता हूँ, राशिद ने कहा। जैसे ही राशिद ने दरवाज़ा खोला, उसके सामने अरमान खड़ा था। नूर है? अरमान ने सीधे सवाल किया। मैं उसे लेने आया हूँ, बाहर भेज दो, उसने जल्दी से जोड़ा। तुम कौन हो? राशिद ने घबराते हुए कहा। मैं तुम्हें नहीं जानता। नूर नहीं है, अरमान ने पूछा। राशिद को अरमान पर गुस्सा आया। उसका मन सचमुच झुनझुना गया था। उसका पूरा प्लान अब मिट्टी में मिलने वाला था। जल्दी से नूर को बुलाओ, मैं उसे लेने आया हूँ, अरमान ने जोर देकर कहा। राशिद कोशिश कर रहा था कि अरमान अंदर न आए, मगर अरमान दरवाजे से जबरदस्ती अंदर घुस गया। अंदर आते ही उसकी नज़र नूर पर पड़ी, जो सामने ही बैठी थी। नूर, चलो घर चलते हैं, सब परेशान हैं, अरमान ने उसे गंभीर स्वर में कहा। कौन परेशान है? नूर ने सवाल किया। उसकी आवाज़ में हल्का डर और नाराज़गी दोनों था। अरमान का गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हें सादिया भाभी ने भेजा है ना? नूर ने उससे पूछा। नहीं, रेहान भाई ने भेजा है मुझे, अरमान ने जवाब दिया। कौन रेहान भाई? नूर की जगह रशीद ने पूछा। नूर कहीं नहीं जाएगी, राशिद ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में खतरे का संकेत था। देखो, मुझे नहीं जाना, नूर ने मना कर दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं फूफी से मिलकर बाद में खुद वापस आ जाऊंगी। अब नूर खुद जाने से मना कर चुकी थी। राशिद ये देखकर खुश हो गया। उसने अरमान की ओर देखते हुए कहा, अब जो तुम चाहो, नूर वहां से नहीं जाएगी, बाहर चले जाओ। मुझे जाना पड़ेगा, रेहान भाई ने कहा है, अरमान ने धीरे से कहा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, फूफी से मिलने के बाद ही जाऊंगी, नूर ने साफ साफ और दृढ़ स्वर में कहा। अरमान ने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, मैं रेहान भाई को बता देता हूँ। वो बाहर जाने लगा। नूर अब सोच में पड़ गई। उसका दिल हल्का सा परेशान था। अभी नूर को दुनियादारी की बातें उसे समझ में नहीं आती थीं। अरमान बाहर निकलकर सीधे रेहान के पास गया और कहा, वो नहीं आ रही है। रेहान ने थोड़ी चिंता भरी आवाज़ में कहा, तुम इस एरिया में थे इसलिए मैंने तुम्हें कहा था, अगर पता होता तो मैं खुद ही आता। वो जिद पर अड़ी है कि मैं नहीं आऊँगी, अरमान ने जवाब दिया। रेहान ने गहरी सांस ली। चाहे जैसे करो अरमान, जबरदस्ती ही सही उसे वहां से लेकर आओ, रेहान ने कहा। अरमान ने थोड़ी देर हिचकिचाते हुए कहा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं रेहान भाई? उसके रिश्तेदार हैं, यहीं रहने दे, खुद आ जाएगी। नहीं अरमान, रेहान ने कड़ा स्वर अपनाया, वो वहां सेफ नहीं है, समझे? अरमान ने झुंझुलाते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? इसीलिए इकबाल चाचा ने उसे हमारे पास छोड़ दिया है, अब तुम्हें हर हाल में उसे घर लेकर आना होगा, चाहे वो माने या न माने, रेहान ने कहा। अरमान बाहर खड़ा था, उसकी आंखों में चिंता और हल्की घबराहट थी। रेहान की बातों का मतलब स्पष्ट था, नूर को अब किसी तरह घर लाना ही होगा, मगर समस्या ये थी कि नूर किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं थी। नूर ने अपने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास अभी भी नहीं उठाया था, वो वैसे ही टेबल पर रखा हुआ था। लो कोल्ड ड्रिंक पियो, राशिद ने कहा। वो कोल्ड ड्रिंक का ग्लास नूर के हाथ में देने लगा। नूर ने अभी तक ग्लास उठाया ही नहीं था, उसका चेहरा थोड़ा परेशान सा था। राशिद ने जानबूझकर ग्लास देते समय नूर का हाथ छूहिया। लड़की चाहे कैसी भी हो, अच्छे बुरे टच को समझने की उसकी सहज समझ होती है। नूर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने ग्लास अपने पास रख लिया और खड़ी हो गई। क्या हुआ? राशिद ने मुस्कुराते हुए पूछा। कोल्ड ड्रिंक पियो, उसने ग्लास वापस राशिद के हाथ में देने की कोशिश की, लेकिन नूर ने साफ मना कर दिया। नहीं, मुझे पीना नहीं है, नूर ने गुस्से में कहा और ग्लास को टेबल पर रख दिया। तभी उसने महसूस किया कि दरवाजा फिर से धक्का हुआ। अरमान अंदर आ गया।
नूर की नजरें सीधे अरमान पर टिकी थीं और उसके चेहरे पर हल्का सा डर और चिढ़ दोनों झलक रहे थे। अरमान का अचानक प्रवेश कमरे में नई तनाव की हवा भर गया। नूर अब बीच में खड़ी थी। उसके मन में उठती बेचैनी और गुस्सा दोनों एक साथ महसूस हो रहे थे। तुम्हें पता है कि तुम्हारी फूफी कहाँ है? अरमान ने अचानक कहा। फूफी के बारे में अरमान को रेहान ने बताया था कि फूफी हॉस्पिटल में है, इसीलिए इकबाल चाचा ने नूर को हमारे जहाँ छोड़ा है और अरमान ने बाहर से पता कर लिया था कि वो अभी तक घर नहीं आई है। अरमान को बाहर से सब कुछ पता चल गया था। फूफी और उसकी बेटी इस घर में नहीं थी बल्कि हॉस्पिटल में थी, क्योंकि फूफी अभी घर नहीं आई थी। अरमान ने तुरंत नूर की स्थिति समझ ली। क्या सच में फूफी अभी तक अस्पताल में है? नूर ने हैरानी और थोड़े डर के साथ पूछा। तुम मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो? नूर ने राशिद से कहा। बहुत हो गया। अरमान ने अचानक नूर का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर बाहर ले जाने लगा। वो तो तुम्हारा आशिक है, इसीलिए लेने आया है। राशिद को अपना प्लान बिगड़ता दिखा तो उसने अरमान के बारे में गुस्से में कहा। राशिद उनकी राह में खड़ा हो गया। अब तुम दोनों आयाशी करने वाले हो, जहाँ से जाकर, जहाँ पर भी पहले की लड़की आई और उसके पीछे तुम। इसे लगा घर पर कोई नहीं होगा, तुम्हारे साथ जहाँ पर जो चाहे मर्दी करेगी, राशिद अरमान और नूर दोनों से कहने लगा। अरमान का गुस्सा उबन पड़ा। वो क्रोधित होकर पास रखी कुर्सी उठाया और सीधे राशिद की ओर फेंक दी। कुर्सी जोर से टकराई और राशिद चौंक कर पीछे हट गया। अरमान ने नूर का हाथ मजबूती से थाम लिया और उसे लेकर घर से बाहर निकल गया। नूर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में डर और नाराजगी दोनों झलक रहे थे। राशिद पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी का मिश्रण था। राशिद के सिर पर खून निकलने लगा था। कुर्सी करने की वजह से उसने अपना सर पड़ा हुआ था। शोर की वजह से वहाँ पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। माहिरा ने नूर को कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था, इस बात का माहिरा को अंदाजा भी नहीं था।
ज्ञान और न्यारा दोनों ही घर से फोन आते ही दिल्ली के लिए निकल गए थे। ज्ञान को उसके माम का फोन आया। उसकी माम ने बताया कि उसके डैड अजय का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है। ज्ञान का दिल धक धक करने लगा। उसने तुरंत टिकट कन्फर्म की और एयरपोर्ट की तरफ भागा। क्या नूर माहिरा से गुस्सा होगी? नूर को अब अकल आएगी कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। प्लीज़ मेरी सीरीज़ पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और व्यू देना याद रखें।